Iran Radio Podcast। दोस्तों, जो पॉडकास्ट आप सुन रहे हैं वो ईरान रेडियो द्वारा तैयार किया गया है। अगर आप दूसरे विषयों पर भी पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट iranradio.ir/hi पर सुन सकते हैं। अप्रैल 1850 को इंग्लिश जहाज मीडिया ने बहुत ही खुफिया मिशन के तहत बंबई पोर्ट से इंग्लैंड का रुख किया। दोस्तों, दुनिया के इतिहास पर पॉडकास्ट का ये 22वां एपिसोड है। ईरान रेडियो से मैं हूं अहमद अब्बास, आप सभी को मेरा सलाम। हम बात कर रहे थे बंबई पोर्ट से इंग्लैंड के रुख करने की, और ये रुख किया था इंग्लिश जहाज मीडिया ने एक ख़ास मिशन के तहत। ये मिशन इतना खुफिया रखा गया था कि जहाज के कैप्टन को भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इस मिशन के बारे में जहाज पर सवार सिर्फ 3 यात्रियों, इंडिया में ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी, उनकी पत्नी और कमांडर इन चीफ रामसे को जानकारी थी। डलहौजी को दुनिया के सबसे बड़े और कीमती हीरे कोहिनूर को इंग्लैंड स्थानांतरित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस हीरे को कोहिनूर भी कहा जाता है। इस हीरे को एक लेदर के बैग में रखकर कश्मीरी शॉल और भेड़ की खाल में लपेटकर सी दिया गया था। इस शॉल को डलहौजी ने अपनी कमर पर लपेट रखा था और वो इसे एक लम्हे के लिए भी अपनी कमर से नहीं खोलता था। बैरन और बांदा नाम के दो हैवी कुत्ते हमेशा लॉर्ड डलहौजी के साथ रहते थे और सोते वक्त भी वो उनकी हिफाजत पर तैनात रहते थे। इससे पहले भी उन्होंने कोहिनूर को लाहौर से बम्बई पहुँचाने की जिम्मेदारी अंजाम दी थी। ये मिशन भी सिर दर्द और जोखिम से भरा हुआ था। बंबई में इसे एक लोहे के बॉक्स में रखा गया, बॉक्स को जंजीरों में लपेट कर लॉक कर दिया गया था और उसकी चाबी गवर्नर जनरल के एक भरोसेमंद अफसर के पास रखी गई थी। मीडिया जहाज के बंदरगाह पर पहुंचने तक उस बॉक्स को एक सरकारी लॉकर में रखा गया था। लाहौर पर जीत हासिल करके इंग्लैंड ने 250 साल बाद पूरे हिंदुस्तान पर फतह का झंडा लहरा दिया था। उस समय लॉर्ड डलहौजी हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल थे। अब उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े डायमंड को क्वीन विक्टोरिया को सौंपने के लिए बहुत ही गर्व के साथ इंग्लैंड का रुख किया था। मीडिया जहाज अभी हिंद महासागर के पानी पर तैर रहा था कि उस पर सवार यात्रियों के बीच महामारी फैलने लगी। 2 नाविकों की मौत हो चुकी थी। जहाज जब ब्रिटेन के कब्जे वाले एक द्वीप मॉरिशस पहुंचा तो उसने भोजन और ईंधन प्राप्त करने के लिए तट पर लंगर डाल दिया, लेकिन द्वीपवासियों को जब जहाज पर महामारी के फैलने का पता चला तो उन्होंने किसी को भी जहाज से उतरने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने कप्तान से जहाज को द्वीप से दूर ले जाने का आग्रह किया। कैप्टन बिना भोजन और ईंधन लिए आगे नहीं बढ़ना चाहता था। स्थानीय लोगों ने द्वीप के गवर्नर से जहाज को डुबाने का आग्रह किया, लेकिन मॉरिशस के गवर्नर को सूचना मिली कि हिंदुस्तान में ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी जहाज पर सवार हैं। उसके बाद गवर्नर ने जहाज को उसके रास्ते पर आगे बढ़ने की इजाज़त दे दी। अगर द्वीप के गवर्नर ने महामारी के बारे में लोगों के भय और चिंता पर ध्यान दिया होता तो कोहिनूर डलहौजी के साथ महासागर की गहराई में डूब गया होता। रास्ते में मेडिया को एक भयानक तूफान का सामना हुआ, जिसके थपेड़ों में ये जहाज 12 घंटे तक डोलता रहा। संकट के दौरान जान बचाने वाली दो बोट्स जहाज से अलग होकर समुद्र में जा पड़ी और लहरों ने दोनों नाविकों को पानी में उछाल दिया। इन तमाम मुश्किलों को पार करते हुए आखिरकार मीडिया जहाज ने 29 जून 1850 को इंग्लैंड के पोर्टसमाउथ बंदरगाह पर लंगर डाल दिया। डलहौजी ने 3 जुलाई को लंदन के बकिंघम पैलेस में हाजिरी दी और रानी विक्टोरिया की खिदमत में कोहिनूर पेश कर दिया। ये 186 कैरेट का डायमंड था, जिसके असली मालिक को कोई नहीं जानता था। किसी को उसके इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता था। पिछले 350 वर्षों के दौरान वो हीरा हिंदुस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के राजाओं के हाथों में घूमता रहा और अब वो ब्रिटेन के चंगुल में था। इस हीरे के बारे में इतिहास में जो सबसे पहली बातचीत मिलती है, वो पहले मुगल बादशाह जहीरुद्दीन बाबर के शासनकाल से संबंधित है। बाबर तैमूर लंग का वंशज था और उसने 1526 में दिल्ली को फतह कर लिया था। हिंदुस्तान के सुल्तानों का खजाना आगरा शहर में छिपा कर रखा गया था। बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को एक फौजियों की टुकड़ी के साथ आगरा की तरफ रवाना किया। जब हुमायूं आगरा के निकट पहुंचा, तो शहर के कुछ बुजुर्ग शहर से बाहर निकले और उन्होंने उससे आग्रह किया कि वो शहर पर हमला ना करे। हुमायूं भी चाहता था कि बिना खून खराबे के शहर को फतह कर लिया जाए। उसने अपने फौजियों को आदेश दिया कि शहर के प्रवेश द्वार के निकट पड़ाव डाल लें और इस बात की निगरानी रखें कि कोई खजाने को बाहर लेकर ना जा सके। कुछ दिन के बाद हुमायूं को खबर दी गई कि शहर का शासक अपने परिवार के साथ भागने की योजना बना रहा था, लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। शासक परिवार हुमायूं के आदेश का इंतजार कर रहा था और जब उन्होंने उसे शांत देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। हुमायूं ने उन्हें रिहा करने का आदेश दे दिया। हुमायूं की इस उदारता को देखकर शासक की पत्नी ने अपने पास मौजूद आभूषण उसे दे दिए। इन गहनों में एक बड़ा हीरा भी था, जिसका वजन 186 कैरेट था। हुमायूं ने वो हीरा अपने पिता बाबर को भेंट किया और बाबर के दरबार में काम करने वाले जौहरी ने इस अनोखे हीरे की कीमत 2.5 दिन में दुनिया में खर्च किए जाने वाले पूरे धन के बराबर आंकी। बाबर ने इनाम के रूप में हुमायूं को हीरा लौटा दिया, क्योंकि अगर उन्होंने शांत रहने की नीति नहीं अपनाई होती तो कुछ नहीं कहा जा सकता था कि हीरे का क्या होता। मुगलों या तैमूर लंग के वंशजों ने उत्तर भारत पर ठीक उस समय कब्जा किया जब पुर्तगाली समुद्र के रास्ते से दक्षिण भारत पहुंचे थे। वे अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों के लिए वहां के छोटे और स्थानीय शासनों के बीच मतभेदों का फायदा उठा रहे थे। पुर्तगालियों ने दावा किया था कि वे भारत में सदियों से रह रहे ईसाइयों के एक समूह को खोजने और मसाले खरीदने के लिए भारत आए थे। भारत में ईसाइयों का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन हाँ, मसाले काफी मात्रा में थे। ये एक ऐसा उत्पाद था जिसे ईरानी और अरब व्यापारी भारत से भूमध्य सागर के तटों तक ले जाते थे, जहाँ वे इसे वेनिस के व्यापारियों को बेचते थे और वे व्यापारी इन मसालों का वितरण पूरे यूरोप में करते थे। पुर्तगाली इन बिचौलियों को ख़त्म करना चाहते थे और पूरे यूरोप में मसालों के एकमात्र निर्यातक बनने की इच्छा रखते थे। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी तट पर और अधिक पैर जमाने की कोशिश जारी रखी और कुछ समय बाद उन्होंने बम्बई की बंदरगाह और उस तट पर भी कब्जा कर लिया, जहां बाद में मद्रास या आज का चेन्नई शहर बसाया गया था। दूसरी तरफ डच जहाज भी धीरे धीरे एशिया की ओर बढ़ रहे थे। डचों ने उन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया जिनसे मिलकर आज इंडोनेशिया देश बना है। पुर्तगालियों और डचों की नज़र भारत के मसालों पर थी और उन्हें कोहिनूर जैसे अनोखे हीरे के बारे में कोई खबर नहीं थी जो दूसरे मुगल बादशाह हुमायूं के पास था। हुमायूं हिंसक और विस्तारवादी शासक नहीं था। वो जीवन का आनंद लेने में विश्वास रखता था, लेकिन दुनिया के सबसे अच्छे और सबसे उपजाऊ क्षेत्र के विशाल भूभाग पर शासन किसी को भी इस पर कब्जा करने के लिए प्रेरित कर सकता था। इन लोगों में सबसे प्रमुख शेरशाह सूरी था, जो भारत के पूर्वी क्षेत्रों में से एक बिहार पर शासन करता था। 16वीं सदी के मध्य में शेरशाह सूरी ने हुमायूं के क्षेत्र पर दो बार हमला किया और अंततः हुमायूं को हराने में सफल रहा। हुमायूं को अपने परिवार और नौकरों के समूह के साथ दिल्ली छोड़कर अफगानिस्तान और फिर ईरान भागना पड़ा, जबकि उसने अपने खजाने के ढेर सारे रत्नों में से सिर्फ कोहिनूर और कुछ याकूत ही लिए। हुमायूं के मार्ग में पढ़ने वाले स्थानीय शासक उसे शरण देने से डरते थे। शेरशाह के डर के कारण वे भटक रहे सम्राट से माफी मांग लेते थे और उसे पानी और रसद देकर एक छोटे से कारवां के साथ विदा कर दिया करते थे। बिना तख्तो ताज का सम्राट जो इधर उधर भटकते भटकते थक गया था, उसने अपने आसपास के लोगों को विदा करने, शासन का विचार अपने दिमाग से निकाल देने और अपने परिवार के साथ किसी दूर दराज इलाके में एक तपस्वी जीवन जीने का फैसला किया। निराशा में डूबा हुआ हुमायूं जब अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था, उसी समय धूल में लिपटा और थका हुआ एक सवार उसके खेमे में दाखिल हुआ। सवार बादशाह के सामने पहुंचते ही जमीन पर गिर पड़ा। वो कोई और नहीं बल्कि हुमायूं का बहादुर और वफादार सेनापति बैरम बेग था, जो शेरशाह के साथ आखिरी युद्ध के बाद गायब हो गया था और अब 2 साल बाद वो अपने राजा के सामने था। युद्ध के मैदान से पीछे हटते समय बैरम बेग ने कुछ सैनिकों के साथ शेरशाह के मुकाबले में डटे रहने की योजना बनाई थी, ताकि सम्राट की सेना युद्ध के मैदान से पूरी तरह से दूर हो सके। उनकी लड़ाई लंबी चली, जिसके बाद वो शेरशाह से बच निकलने में सफल हुआ। बैरम बेग एक ईरानी योद्धा था जो कुछ साल पहले अमीर बनने की उम्मीद में भारत गया था और बाबर और हुमायूं की सेना में लड़कर सेनापति के पद तक पहुंचा था। हुमायूं अपने सेनापति को देखकर बहुत खुश हुआ। बैरम बेग ने बादशाह को अपने देश ईरान में शरण लेने का सुझाव दिया, क्योंकि उसे यकीन था कि सफवी काल के दूसरे राजा शाह तहमास्ब उनसे मिलकर बहुत खुश होंगे। हुमायूं ने बैरम बेग की सलाह मान ली और वो ईरान पहुंच गया। ईरान के शहर कज़वीन में उसकी मुलाकात शाह तहमास्ब से हुई। शाह तहमास्ब ने हुमायूं को शिया धर्म स्वीकार करने का सुझाव दिया और बदले में अपना हारा हुआ राज्य पुनः प्राप्त करने के लिए हुमायूं को 12,000 सैनिक देने का वादा किया। हुमायूं ने स्वीकार कर लिया और शिया धर्म का अनुयायी बन गया। ईरानी बादशाह ने चुने हुए 12,000 सैनिकों को तैयार रहने का आदेश दे दिया। जब हुमायूं अपने निवास पर लौटा तो उसने कोहिनूर हीरा और दूसरे कीमती मोतियों को सीप से बने एक बक्से में रखा और बैरम बेग से ईरान के राजा को देने के लिए कहा। जब हुमायूं ने अपने सेनापति को हैरत में देखा तो उससे कहा कि मैं बादशाह का कर्जदार नहीं रहना चाहता। इन आभूषणों से उसने जो मेरी मदद की है उसकी भरपाई हो जाएगी। बैरम बेग महल में पहुँचा और शाह तहमास्ब को ये बक्सा भेंट किया। राजा ने बक्सा खोला और हीरा देखकर आश्चर्यचकित रह गया। इससे पहले कभी उसने इतना चमकीला और इतना बड़ा रत्न नहीं देखा था। सभी दरबारी राजा की इस बात से सहमत थे कि इस पत्थर की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। राजा ने बक्सा बंद करके अपने पास रख लिया और इस तरह हुमायूं का उपहार स्वीकार करने की घोषणा कर दी। कोहिनूर ईरान में रह गया और हुमायूं भारत चला गया। 12,000 ईरानी सैनिकों ने दिल्ली में शेर शाह को हराने और शाही सिंहासन फिर से हासिल करने में हुमायूं की मदद की, लेकिन कोहिनूर ईरान में नहीं रुका। मध्य और दक्षिणी भारत में छोटे और बिखरे हुए राज्यों के अलावा 5 बड़े राज्य भी थे। इन 5 राज्यों में से 2 क्षेत्रों के शासक शिया धर्म के अनुयायी थे। 1547 में अहमदनगर के राजा बुरहान निज़ाम ने भी शिया धर्म स्वीकार करने का फैसला किया। बुरहान निज़ाम ने प्रार्थनाओं में 12 इमामों के नाम और ईरान के राजा के नाम का उल्लेख करने और सिंहासन के ऊपर शियाओं का हरा झंडा लगाने का आदेश दिया। जब शाह तहमास ने यह खबर सुनी तो वो इतना खुश हुआ कि उसने निज़ाम को इनाम के रूप में कोहिनूर देने का आदेश दिया। कोहिनूर फिर भारत लौट गया, लेकिन अहमदनगर साम्राज्य के खजाने तक नहीं पहुंच सका। मेहतार जमाल नाम के एक व्यक्ति को शाह तहमास ने अहमदनगर के राजा को ये उपहार देने के लिए नियुक्त किया था, लेकिन हीरे को देखकर उसकी नीयत खराब हो गई और उसने उसे एक अज्ञात व्यापारी को बेच दिया और गायब हो गया। शाह तहमास और अहमदनगर के शासक के सिपाही मेहतार जमाल को नहीं ढूंढ सके। कोहिनूर हीरे की बिक्री और उसकी वापसी तक लगभग 110 साल लग गए। इस दौरान यह हीरा कितनी बार खरीदा और बेचा गया, इसकी कोई जानकारी नहीं है। इस दौरान न जाने कितने लोगों की किस्मत इस हीरे से जुड़ी, लेकिन कोहिनूर का सफ़र जारी रहा।